एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि एक पूरा युग है। इतिहास, महत्वाकांक्षा, कला और इंसानी जज्बे का एक घना ताना बाना।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं केन फॉलेट के महाकाव्यात्मक उपन्यास द पिलर्स ऑफ द अर्थ की। इसे अक्सर धरती के स्तंभ भी कहा जाता है।
और केन फॉलेट का सफर भी बड़ा दिलचस्प है ना? पहले तो वो थ्रिलर लिखते थे, आई ऑफ द नीडल जैसी किताबें।
हाँ, बहुत कामयाब थ्रिलर लेखक थे, लेकिन उनके मन में कहीं गहरे मध्यकालीन कैथीड्रल्स के लिए एक जुनून था, एक आकर्षण।
और उसी जुनून से निकली ये किताब पिलर्स ऑफ द अर्थ। सुना है प्रकाशक शुरू में हिचकिचा रहे थे, उन्हें लगा थ्रिलर वाले पाठक शायद इसे।
हाँ, उन्हें शक था कि इतनी लंबी ऐतिहासिक कहानी चलेगी या नहीं, लेकिन फॉलेट अड़े रहे और नतीजा हम सबके सामने है।
बिल्कुल, उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई ये किताब। दुनिया भर में करोड़ों प्रतियां बिकी, एक तरह से आधुनिक ऐतिहासिक कथा साहित्य में मील का पत्थर।
सही कहा, तो आज हम इसी महागाथा की परतों को खोलेंगे, इसके किरदारों के सफर और गहरे विषयों को समझने की कोशिश करेंगे।
कहानी हमें ले जाती है 12वीं सदी के इंग्लैंड, वो वक्त जिसे इतिहास में दी अनार्की कहते हैं, मतलब
अराजकता का युग। राजा हेनरी प्रथम की मौत हो गई थी और गद्दी के लिए जंग छिड़ गई थी उनकी बेटी मॉड और भतीजे स्टीफन के बीच। भयानक गृहयुद्ध,
देश में उथल पुथल, हिंसा।
हाँ, कानून व्यवस्था लगभग खत्म। और इसी माहौल में किंग्सब्रिज नाम के एक छोटे काल्पनिक शहर में एक सपना पलता है इंग्लैंड का सबसे शानदार गॉथिक कैथीड्रल बनाने का।
यही है कहानी की धुरी, बनाना बनाम बिगाड़ना।
बिल्कुल, एक तरफ है बनाने वाले कारीगर, भिक्षु, व्यापारी, दूसरी तरफ है तोड़ने वाले, लालची लॉर्ड्स, भ्रष्ट पादरी, उम्मीद बनाम ना उम्मीदी।
और ये आम लोगों की कहानी है, राजा रानी की नहीं, उनके संघर्ष, उनके सपने।
हाँ, यही इसकी खास बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही बड़ी रहस्यमयी है।
अच्छा, कैसे?
साल है 1123, एक चौक पर भीड़ जमा है, एक फ्रांसीसी युवक को फांसी दी जा रही है चोरी के इल्जाम में, माहौल एकदम तनाव भरा। तभी भीड़ से एक लड़की निकलती है, गर्भवती है वो, नाम है एलिन। वो चिल्लाकर कहती है कि ये युवक बेगुनाह है और तीन लोग झूठी गवाही दे रहे हैं, एक नाइट, एक पादरी और एक भिक्षु।
ओ, और फिर
वो उन तीनों को श्राप देती है। ये घटना, ये श्राप, ये कहानी पर दशकों तक छाया रहता है। भविष्य के सारे संघर्षों के बीज यहीं बो दिए जाते हैं।
बाप रे, शुरुआती इतनी नाटकीय।
हाँ, फिर कहानी 12 साल आगे जाती है, 1135-36। हम मिलते हैं टॉम बिल्डर से, एक माहिर राजमिस्त्री, लेकिन बेचारा बेरोजगार,
काम की तलाश में भटक रहा होगा।
हाँ बिल्कुल, अपने परिवार के साथ, पत्नी एग्नेस, दो बच्चे। हालात इतने खराब के जंगल में एग्नेस एक और बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है।
अरे नहीं,
टॉम पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है वो नवजात को पाल नहीं पाएगा तो उसे वहीं छोड़ देता है, बहुत भारी मन से।
ये तो बहुत ही दुखद है।
हाँ, लेकिन तभी उसकी मुलाकात होती है उसी रहस्यमयी औरत एलन और उसके बुद्धिमान बेटे जैक से। वो जंगल में रहते हैं, एलन उसे सहारा देती है। अपराध बोध से भरकर टॉम बच्चे को लेने वापस जाता है, पर तब तक किंग्सब्रिज मठ का एक भिक्षु उसे उठाकर ले जा चुका होता है।
अच्छा, वो बच्चा बच गया, और किंग्सब्रिज मठ में क्या चल रहा है?
वहीं एक और अहम किरदार आता है, फिलिप, एक नौजवान आदर्शवादी भिक्षु। वो मठ की गरीबी और गिरी हुई हालत देखकर बहुत दुखी होता है, लेकिन वो बहुत काबिल है। अपनी लगन और समझदारी से जल्द ही मठ का मुखिया, प्रायर, चुन लिया जाता है।
अच्छा,
और हाँ, वही भिक्षु जो बच्चे को लाया था वो उसे फिलिप को सौंप देता है। फिलिप उसका नाम रखता है जोनाथन।
तो टॉम का बेटा मठ में पहुंच गया।
हाँ, और फिर एक घटना होती है, पुराना किंग्सब्रिज चर्च रहस्यमय तरीके से जल जाता है। फिलिप के लिए ये एक आपदा है,
लेकिन शायद किसी और के लिए मौका।
बिल्कुल, टॉम बिल्डर जो काम की तलाश में वहीं पहुंचा है, इसमें एक बड़ा मौका देखता है। वो फिलिप को यकीन दिलाता है कि वो मिलकर एक नया शानदार कैथीड्रल बना सकते हैं, ऐसा जो पहले कभी ना बना हो।
और यहीं से शुरू होता है वो महान सपना। लेकिन आपने कहा था कि देश में अराजकता थी।
हाँ, और वो कहानी में घुसपैठ करती है। विलियम हामले नाम का एक क्रूर रईस है, वो धोखे से शिरिंग नाम की जागीर हड़प लेता है।
ओह,
वहां के नेक अर्ल बर्थलोमियो को कैद कर लेता है और उसके बच्चों को, बेटी एलियाना और बेटा रिचर्ड, बेघर कर देता है।
ये तो बहुत बुरा हुआ।
और विलियम यहीं नहीं रुकता, वो इलियाना के साथ बहुत बुरा सुलूक करता है, उसका अपमान करता है। ये घटना इलियाना को पूरी तरह बदल देती है।
जाहिर है।
वो कसम खाती है बदला लेने की और अपने भाई रिचर्ड को उसका हक वापस दिलाने की। उसका ये संकल्प कहानी का एक अहम धागा बन जाता है।
तो मतलब कैथेड्रल के निर्माण के साथ साथ ये निजी लड़ाइयां भी चल रही हैं, बनाना और बदला लेना।
हाँ बिल्कुल। अब शुरू होता है निर्माण और संघर्ष का लंबा दौर, उपन्यास के दूसरे और तीसरे हिस्से में। टॉम बिल्डर के नेतृत्व में काम शुरू होता है।
आसान तो नहीं रहा होगा।
बिल्कुल नहीं। प्रायर फिलिप को सिर्फ प्रार्थना नहीं, राजनीति भी करनी पड़ती है। पत्थर की खदान चाहिए, लकड़ी चाहिए,
पैसे भी चाहिए होंगे।
हाँ, और उसका मुकाबला होता है चालाक और ताकतवर बिशप वॉलरिन बिगॉर्ड से। वो किंग्सब्रिज की तरक्की से जलता है, फिलिप के रास्ते में रोड़े अटकाता है।
एक धार्मिक आदमी होकर भी।
हाँ, वो सत्ता का भूखा है। फिलिप अपनी समझदारी से उससे निपटता है। इसी बीच नए चेहरे आते हैं। जैक, टॉम का सौतेला बेटा।
हाँ, एलन का बेटा।
उसमें पत्थर तराशने और डिजाइन की कमाल की समझ है, नैसर्गिक प्रतिभा, जैसे पत्थर उससे बात करते हों।
वाओ।
लेकिन टॉम का अपना बेटा अल्फ्रेड उससे बुरी तरह जलता है। वो अनाड़ी भी है, घमंडी भी, जैक से नफरत करता है।
भाई भाई में ये जलन, ये तो आगे मुश्किल पैदा करेगी।
बिल्कुल। और उधर एलियना, उसका सफर तो कमाल का है।
हाँ, उसने कसम खाई थी, क्या हुआ उसका?
वो हार नहीं मानती, अपनी बची खुची पूंजी से ऊन का व्यापार शुरू करती है।
एक कुलीन लड़की हो के व्यापार उस जमाने में।
हाँ, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वो इतनी होशियार और मेहनती है कि किंग्सब्रिज के बाजार का फायदा उठाकर बहुत कामयाब व्यापारी बन जाती है।
गजब, ये हुई ना बात।
वो अपनी कमाई से भाई रिचर्ड को नाइट बनने में मदद करती है ताकि वो अपनी जागीर वापस पा सके। हर कोई अपने तरीके से लड़ रहा है।
लेकिन दुश्मन भी तो हाथ लगाए बैठे होंगे, विलियम हैमले और वो बिशप।
हाँ, विलियम हैमले किंग्सब्रिज की तरक्की से चिढ़ता है। उसे लगता है ये उसकी शान में गुस्ताखी है। और वैलरन तो मौके की तलाश में ही रहता है।
और उन्हें मौका मिल जाता है।
हाँ, कहानी के तीसरे भाग 1140-42 में देश में गृहयुद्ध तेज हो जाता है। लिंकन शहर में बड़ी लड़ाई होती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर विलियम और वैलरन किंग्सब्रिज पर हमला कर देते हैं।
ओह नहीं।
वो ऊन के मेले को निशाना बनाते हैं। लूटपाट, आगजनी, भयानक कत्लेआम, निर्माणाधीन कैथेड्रल को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं।
और टॉम बिल्डर,
वो कैथेड्रल की रक्षा करते हुए मारा जाता है।
क्या, टॉम? नहीं।
हाँ, और एलियाना की सारी ऊन जल जाती है, सारी मेहनत खाक। ऐसा लगता है सब खत्म, सपना राख हो गया।
ये तो बहुत ही भयानक मोड़ है। टॉम के बिना अब क्या होगा कैथेड्रल का?
वही तो, सब बिखर सा जाता है। टॉम का वो नाकाबिल बेटा अल्फ्रेड खुद को मास्टर बिल्डर बना लेता है।
अल्फ्रेड, जिसे कुछ आता भी नहीं।
हाँ, और एलियाना, वो पूरी तरह टूट चुकी है। भाई रिचर्ड को अभी भी पैसों की जरूरत है। वो हताशा में एक अजीब फैसला लेती है।
क्या?
वो अल्फ्रेड से शादी करने को तैयार हो जाती है।
अल्फ्रेड से? जैक का क्या? वो तो एलियाना से प्यार करता था ना।
बिल्कुल। जैक का दिल टूट जाता है। उसे लगता है किंग्सब्रिज में अब कुछ नहीं रहा उसके लिए। वो इंग्लैंड छोड़ देता है।
कहाँ चला जाता है?
एक लंबी यात्रा पर, फ्रांस, स्पेन, तीर्थ यात्रा कह सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ भागना नहीं था, ये ज्ञान की खोज बन गई।
ज्ञान? कैसा ज्ञान?
फ्रांस में वो नए बन रहे गिरजाघरों को देखता है, सेंट डेनिस जैसे। वहां वो नई वास्तुकला सीखता है, गॉथिक। ऊंची नोकदार मेहराबें, फ्लाइंग बटरेस, रंगीन शीशे वाली बड़ी खिड़कियां।
अच्छा, वो हवादार रोशनी वाली शैली।
हाँ, वो समझता है कि असली मजबूती मोटी दीवारों में नहीं बल्कि डिजाइन में है, ऊंचाई में, रोशनी में। ये उसके लिए एक पुनर्जन्म जैसा था।
और किंग्सब्रिज में अल्फ्रेड क्या गुल खिला रहा था?
वो अपनी नालायकी साबित कर रहा था। उसने कैथेड्रल में पत्थर की एक भारी छत बनाई जिसके खतरे जैक पहले ही बता चुका था।
और वो गिर गई?
हाँ, छत गिर गई, कई लोग मारे गए। और ठीक इसी वक्त जैक वापस लौटता है, नए ज्ञान, नया आत्मविश्वास के साथ,
सही समय पर।
फिर प्रायर फिलिप फौरन उसकी काबिलियत पहचान लेते हैं, उसे नया मास्टर बिल्डर बना देते हैं।
अल्फ्रेड का क्या हुआ?
उसकी छुट्टी। उधर एलियाना की अल्फ्रेड से शादी भी अवैध घोषित हो जाती है। लेकिन तब पता चलता है कि वो अल्फ्रेड के बच्चे की मां बनने वाली है।
ओह, जिंदगी कितनी उलझी हुई है।
हाँ, लेकिन अब उम्मीद की किरण दिखती है। उपन्यास के पांचवें भाग में जैक के नेतृत्व में कैथेड्रल का काम फिर शुरू होता है,
इस बार नए गॉथिक डिजाइन के साथ।
बिल्कुल, पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा, ज्यादा रोशन, ज्यादा भव्य। ये अब सिर्फ इमारत नहीं, नई सोच का प्रतीक है।
और जैक और एलियाना,
सालों बाद वो भी आखिरकार एक हो जाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। किंग्सब्रिज फिर से तरक्की करने लगता है।
चलो, कुछ तो शांति आई, लेकिन कहानी अभी बाकी है ना? चरमोत्कर्ष।
हाँ, भाग 6। 1170-74, कैथेड्रल लगभग पूरा होने वाला है। रिचर्ड भी लड़ाइयां जीतकर शिरिंग का अर्ल बन जाता है। एलियना की कसम पूरी हुई।
वाह, लेकिन पुराने दुश्मन वैलरन,
वो आखिरी चाल चलता है। जैक पर हत्या का झूठा इल्जाम लगाकर काम रुकवाने की कोशिश करता है।
इसी बीच इंग्लैंड में भी कुछ बड़ा हो रहा था, शायद राजा हेनरी द्वितीय और थॉमस बेकेट।
हाँ बिल्कुल, राजा और आर्कबिशप बेकेट में ठन जाती है और फिर बेकेट की कैंटरबरी कैथीड्रल में हत्या हो जाती है। बड़ा कांड होता है। प्रायर फिलिप, जो अब बूढ़े हो गए हैं, इस मौके का बहुत होशियारी से इस्तेमाल करते हैं। वो बेकेट को संत बनवाने में मदद करते हैं और किंग्सब्रिज को भी एक अहम तीर्थस्थल बना देते हैं।
भविष्य सुरक्षित कर लिया।
हाँ, और फिर खुलता है कहानी का सबसे बड़ा राज। जैक को अपने पिता की सच्चाई पता चलती है।
वो फ्रांसीसी युवक जिसे फांसी हुई थी।
हाँ, वो चोर नहीं था, वो व्हाइट शिप नाम के जहाज के डूबने से बचा इकलौता आदमी था। और वो जहाज डूबा नहीं था,
डुबाया गया था।
हाँ, राजा के वारिस को मारने की राजनीतिक साजिश, और इसमें शामिल था वालरन बिगॉड जब वो जवान था।
क्या, बिशप वालरन?
जैक भरी सभा में सबूतों के साथ उसका पर्दाफाश कर देता है। वालरन का दशकों पुराना भेद खुल जाता है, उसका पतन होता है, वो अपमानित होकर एक साधारण भिक्षु बन जाता है।
और विलियम हैमले?
वो भी अपनी आखिरी चाल में नाकाम होता है और आखिरकार उसे उसके गुनाहों के लिए फांसी दे दी जाती है। सालों बाद न्याय मिलता है।
अंत भला तो सब भला। और कैथेड्रल?
वो पूरा होता है, शानदार रोशनी से भरा हुआ, उन सबकी आस्था, बलिदान और मेहनत का प्रतीक।
वाह, क्या कहानी है। और किरदार, जैसे टॉम बिल्डर, वो सपना देखता है लेकिन उसका जुनून।
हाँ, परिवार को मुश्किलें भी देता है पर उसकी विरासत रहती है। वो कहता है ना, कुछ इतना सुंदर और विशाल बनाना जो हजार साल तक खड़ा रहे।
और प्रायर फिलिप, उपन्यास की नैतिक रीढ़, छोटे कद के परिराधे कितने बुलंद।
बिल्कुल, वो सिर्फ इमारत नहीं, उम्मीद बनाना चाहते हैं। राजनीति भी करनी पड़ती है, समझौते भी, पर उनका मूल मंत्र है, सबसे बड़ा पाप निराशा है। ये पूरी कहानी का सार है।
सही कहा। और एलियना, उसका सफर तो अविश्वसनीय है, एक कुलीन लड़की से सफल व्यापारी।
हाँ, उसका संकल्प, मैं अब एक भद्र महिला नहीं रहूंगी, मैं एक व्यापारी बनूंगी। उस वक्त ये कहना, वो नारी शक्ति और लचीलेपन का प्रतीक है।
और जैक, जंगल का लड़का जो मास्टर बिल्डर बनता है, कला और नई सोच का संगम।
वो सिर्फ पत्र नहीं तराशता, वो वास्तुकला को नई दिशा देता है, रोमनेस्क से गॉथिक। उसमें वो जिज्ञासा है, वो लगन है, और एलियना के लिए उसका प्यार।
लेकिन अंधेरा भी तो है, विलियम हैमले जैसा सिर्फ क्रूरता।
हाँ, पाश्विक बल, असुरक्षा से जन्मी हिंसा।
और उससे भी खतरनाक शायद वैलरिन बिगॉड, वो बुद्धि का इस्तेमाल बुराई के लिए करता है, धर्म का मुखौटा पहनकर।
बिल्कुल, वो भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतीक है, फिलिप की सच्ची आस्था और वैलरिन के सत्ता के खेल का टकराव।
इन किरदारों से कई विषय उभरते हैं, जैसे महत्वाकांक्षा बनाने की या बिगाड़ने की।
हाँ, टॉम जैक फिलिप एलियना बनाना चाहते हैं, विलियम वैलरिन सिर्फ कब्जा करना या तोड़ना।
और आस्था का सवाल, सच्ची आस्था कहाँ है, रस्मों में या इंसानियत में?
फिलिप की आस्था जमीन से जुड़ी है, लोगों से जुड़ी है, वैलरिन की सिर्फ सत्ता से।
और सबसे बढ़कर शायद वो हार न मानने वाला जज्बा, दृढ़ता, हर कोई गिरता है पर फिर उठता है।
बिल्कुल, एलियना का फिर से खड़ा होना, जैक का सफर, फिलिप की लड़ाई, खुद कैथीड्रल का बनना जो बार बार टूटकर भी खड़ा होता है।
ये उस अराजकता के युग में व्यवस्था की तलाश भी है।
हाँ, तर्क और सुंदरता की जीत और नवीनता का उदय भी, जैक का गॉथिक शैली लाना, परंपरा बनाम प्रगति।
जब ये कहानी पढ़ते हैं तो ये सिर्फ पढ़ना नहीं होता, एक अनुभव होता है, किरदारों से जुड़ जाते हैं हम।
हाँ, उनके दुख में दुख, खुशी में खुशी, गुस्सा भी आता है, डर भी लगता है, और अंत में एक सुकून मिलता है। शायद वही कैथारसिस है।
हाँ, मन का मैल धुल जाना और कहानी खत्म होने के बाद भी असर रहता है। एक तो किरदारों की हिम्मत देखकर हैरानी होती है,
और ये एहसास कि वक्त बीत जाता है पर इंसान का काम रह जाता है, एक छोटी सी जिंदगी भी किसी बड़ी स्थायी चीज का हिस्सा बन सकती है।
ये आम लोगों का इतिहास है, उनके सपनों और संघर्षों से बना।
सच कहा, ये कहानी यही दिखाती है कि बड़े सपनों के लिए पीढ़ियों की मेहनत और बहुत बलिदान चाहिए।
लेकिन अंत में इंसान के बनाने की इच्छा, उसकी हिम्मत, तोड़ने वाली ताकतों पर जीत हासिल कर सकती है, चाहे कितना भी वक्त लगे।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।